نحمده ونصلي على رسوله الكريم واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جوان سالوں سے نو بہاری تقریریں آپ نے سنی خزاں رسیدہ جھاڑ سے سوائے پیلے پتے کے اور کیا ملے پتجھڑ کا زمانہ ہے میں وہ بھی پتا جو ہوتا ہے سونے کی طرح گولڈ ہوتا ہے ہاں سمجھ گیا میں آپ ہی کا جواب دے رہا ہوں میں زیادہ دیر آپ کو بٹھانا نہیں چاہتا صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مدرسے کی تاریخ جتنی پرانی ہے مدرسے کے بچوں پر تنقید بھی اتنی پرانی ہے نہیں سمجھے آپ مدرسے کی تاریخ چلی ہے تو تنقید کی بوچھار بھی چلی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن مجید فرما رہا ہے مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک کھلے ہوئے فضا کھلی ہوئی فضا میں صفہ کوٹا چبوترا گجراتی میں اس کو کہتے ہیں اوٹلا مسجد نبوی سے متصل ایک اوٹلا بنایا ایک چبوترا بنایا اس کا مقصد یہ تھا صحابہ کرام میں وہ لوگ جو ذریعہ معاش کھانے کمانے کا ذریعہ جن کے پاس نہیں تھا انہیں رہنے کا ایک ٹھکانہ مل جائے اور دوسرے جو مالدار صحابہ کرام ہیں وہ ان کی کفالت کرے اور اصل مقصد یہ تھا کہ یہ 24 گھنٹہ یہاں رہیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حدیثیں سنیں گے اور ان حدیثوں کو یاد کر کے وہ لوگ جو کاروبار میں مصروف ہیں انہیں وہ روایتیں سنائیں گے یہ پہلا مدرسہ تھا مسجد ہے اور مسجد سے لگا ہوا ایک مدرسہ جس میں سلیب نہیں تھا اللہ نے پہلے آسمان کا سلیب ڈال دیا تھا نبی نے چبوترا بنایا آسمان اس کا سلیب تھا بس یہ مدرسہ تھا اس میں کبھی 70 کبھی 72 کبھی 100 کبھی 110 تک کی روایت آئی ہے کہ صحابہ کرام یہاں مستقل رہتے تھے اور حدیث نبوی مسائل قرآن سیکھتے تھے آیتیں یاد کرتے تھے لوگوں کو یاد کراتے تھے یہ ہے مدرسے کی پہلی بنیاد وہاں ایک طبقہ اور ایک گروپ تھا جو بہت زیادہ مالدار تھا مدینے کی پوری منڈی ان کے ہاتھ میں تھی باہر سے بڑے بڑے غلے منگاتے تھے کپڑے کے بیپاری تھے ہر چیز کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ قوم تھی یہودی آج بھی پوری دنیا میں بزنس پر ان کا کنٹرول ہے مدینے میں ایک بہت بڑی آبادی یہودیوں کی تھی یہ یہودی وہاں کیوں آباد تھے انہوں نے اپنے علماء سے سنا تھا اپنی کتابوں میں پڑھا تھا कि एक आखिर जमाने में नबी पैदा होंगे और उनकी हिजरत की जगह वही बताई गई थी जो मदीने का नक्शा था। तो यहूदी कौम के बहुत से वहां लोग आकर आबाद हो गए थे, और आबाद कहीं वायर जल रहा है, आबाद होने के साथ साथ कुछ आरोप नहीं लगेगी, उनकी नस्लें गुजर गईं और उनको उम्मीद ये थी कि ये नबी जो आखिर जमाने में आएंगे वो शायद हमारी ही कौम में से आएंगे। लेकिन उनका ये ख्याल शर्मिंदे ताबीर ना हो सका, और नबी आए तो बनी इसराइल से नहीं आए, बनी इस्माइल से आए। बनी इसराइल से यहूदी थे और बनी इस्माइल में ये अरब थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहूर हुआ, मदीने मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ लाए, तो इन यहूदियों के दिलों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कीना, बुग्ज और अदावत पैदा हो। इन्होंने एक चाल चली, यहूदी हमेशा चालबाज होते हैं इल्ला माशाअल्लाह, के इस्लाम का दबदबा तो बहुत है, हम खुल्लम खुल्ला अगर मुखालफत करेंगे तो पीस दिए जाएंगे। अरब बड़े बहादुर होते थे। उन्होंने ये आपस में बात की कि चलो हम लोग भी मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन जबान से मुसलमान होंगे और दिल के अंदर दुश्मनी की प्लानिंग करके मुसलमानों में लड़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ग्रुप को मुनाफिक कुरान ने कहा। सूरह मुनाफिकून पढ़ लीजिए, और तफसील नहीं मुझे बयान करना है। इन मुनाफिकों ने जहां जहां चुपके चुपके दरपर्दा शरारतें की थी, जब हुजूर ने मस्जिद नबी में चबूतरा बनाकर सहाबे किराम को पढ़ाना शुरू किया और पढ़े हुए लोगों को देहात में इधर उधर हुजूर भेज करके और लोगों में इस्लाम का की इशाअत फरमाते थे, मुनाफिकों ने एक शरारत ये की कि मदीने में मालदार सहाबे किराम से उनके ताल्लुकात बिजनेस के भी थे, दोस्ती के भी, जाकर कहने लगे देखो ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 24 घंटे पड़े रहते हैं, ये सिर्फ खाने पीने के लालची हैं, कोई सहारा नहीं तो पेट पालने के लिए यहां पर पड़े रहते हैं, और दीन का की तालीम हासिल करने का जरिया इन्होंने बनाया है। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि जो इनको खाने पीने की चीजें देते हैं बंद कर दीजिए, तो ये जितने पेट पालू लोग हैं ये यहां से चले जाएंगे। ये उन्होंने प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद मदीने में उन पढ़ने वाले गरीब सहाबे किराम के खिलाफ इन्होंने प्रोपेगंडा किया कि ये सिर्फ खाने पीने की लालच में यहां पड़े हुए हैं, इन्हें खाना पीना बंद कर दो। कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, इसी बैकग्राउंड में अल्लाह फरमाता है, यही वो मुनाफिक हैं जो कहते फिरते हैं ला तुम फिको अला मन इंद रसूलिल्लाह, ये जो रसूलुल्लाह के पास पड़े रहते हैं ऐ मालदार सहाबा इन पर खर्च करना छोड़ दो। ये तर्जुमा है उसका। तुम इनको खिलाओ पिलाओ नहीं, हत्ता जन फब्बू, यहाँ तक कि ये लोग भाग जाएंगे, फिर पढ़ना लिखना कुछ इनको नहीं रहेगा। तालीम हासिल करने के बहाने में इनको लुगमय स्तर मिलता है, दावतें उड़ाते हैं, खिलाना पिलाना हर के अखराजात सब बंद कर दो, देखो ये भीड़ यहाँ से कट जाएगा। ये प्रोपेगेंडा शुरू किया, इसका जवाब खुद अल्लाह दे रहे हैं। पढ़ने वालों के खिलाफ इस किस्म के प्रोपेगेंडे करने वाले मुनाफिक, और इन मुनाफिकों का जवाब देने वाला अल्लाह, मेहमाने रसूल हैं, इनके खिलाफ साजिश रचने वालों का जवाब रब्बुल आलमीन अता फरमा रहा है। इरशाद फरमाता है वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ض वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून। ऐ प्रोपेगंडा करने वालों मुनाफिकों सुनो, जमीन आसमान के सारे खजाने अल्लाह के दस्त कुदरत में, तुम इनमें रिस्क का दरवाजा बंद करना चाहते हो और कहते हो इन्हें मत खिलाओ, इन्हें चंदा मत दो, ये सिर्फ दीन के नाम पर पेट पालने के लिए यहाँ पर है। अल्लाह फरमाता है सुन लो, वलिल्लाहि खज़ाइनु समावाति वल अल्लाह, जमीन का भी खजाना अल्लाह के हाथ में है, आसमान का भी खजाना हाथ में है। ऐ यहूदियों, अगर जमीन के खजाने को तुमने बंद किया तो रब आसमान का खजाना इनके लिए उजार देगा। रिश्त का एक दरवाजा बंदा बंद करता है, रब्बुल आलमीन जमीनों आसमान के हजारों दरवाजे खोल दिया करता है। ये है तलबा का एजाज अल्लाह के लिए। इनके खिलाफ प्रोपेगंडा करना, मौलाना लोग भाई पर घूमते, तलबा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ कपड़ा पहनते हैं, अच्छा नहीं लगता लोगों को। ये चाहते चीथड़े का कुर्ता पहने और लपक झपक पायजामा पहने, न साबुन मिले न बेचारे को परफ्यूम मिले, फकीरों की तरह घूमते रहे। याद रखो मेरा रब कुरान के तीवर में फरमाता है, तुम अगर इनके खिलाफ बोलोगे तो रब्बुल आलमीन अपनी रहमतों के दरवाजे खोलेगा, उसकी रहमत के दरवाजे कौन बंद। बच्चों की हिमायत करना अल्लाह की सुन्नत है, बच्चों की हिमायत करना, उन पर एतराज करने वालों को सख्त जवाब देना अल्लाह की सुन्नत है, सुन लो। और बच्चों पर एतराज, मदरसों पर एतराज करना ये मुनाफिकों का लफंगा था। अब लफंगे बनना चाहते हो या सुन्नत इलाहिया की तकलीफ करना चाहते हो, ये सर्वे आता। अगर अल्लाह की सुन्नत पर अमल करना चाहते हो तो तुम्हें अपने खजाने खोलने पड़ेंगे, और अगर मुनाफिकों की राह चलना चाहते हो तो तुम्हें एतराज करने का हक है, लेकिन अपनी मुनाफिकत को पहले जाहिर कर दो कि हम मुनाफिक। अकीदे का सही, नबी की सच्ची मोहब्बत रखने वाला, खुदा की जात पर यकीन रखने वाला कभी भी तलबा के खिलाफ जबान दराजी नहीं कर सकता, ये मेरा दावा। और मैंने बहुत सख्त बात नहीं की है, अभी तो इससे बड़ी बड़ी सख्त बात है, अभी नॉर्मल गुफ्तगू की है जो कुरान मजीद ने सूरह मुनाफिकून में बताया है। मेरे दोस्तों, मैं सारी बातों का खुलासा यह करना चाहता हूँ कि जो लोग तलबा की हिमायत करेंगे, खुदा की कसम लाउड स्पीकर पर कह रहा हूँ, उनके कारोबार पर जवाल नहीं आएगा, और आएगा तो बरकतें ऐसी होगी कि पहले से ज्यादा वो बाहैसियत बन जाएंगे। हमने देखा है, मुबारकपुर चले जाओ, एक छोटा सा गांव था मुबारकपुर, आज तो बहुत बड़ा गांव बन गया है। वहां तालुका भी नहीं है, जिला भी नहीं है, एक गांव की हैसियत रखता है मुबारकपुर। वहां के गरीब मुसलमानों का जज्बा, हम बचपन में जानते हैं कि वहां पर 300 बच्चे अशरफिया में पढ़ते थे, उनके लिए मतबख नहीं था। मतबख समझे, रसोड़ा, रसोड़ा समझे, बावर्ची खाना नहीं था। फिर खाना कहाँ खाते थे, एक इश्तलाह वहां से चली जागीर। जागीर का मतलब यह होता था कि शाबान के बाद जब रमजान गुजर जाता, ईद का महीना आता, तो बाहर से लड़के दाखले के लिए आते थे। तो वहां गांव का हर आदमी ये चाहता था कि मदरसे का एक बच्चा मेरे यहां खाने के लिए रोज आए। चुनांचा 300 तलबा पूरे गांव में रोजाना छुट्टी के बाद हर घर में पाबंदी के साथ जाया करते थे। वो लोग उनसे तीजा फातिया नहीं करवाते थे, आया है तो इसको खूब निचोड़ो, निचोड़ते नहीं थे, एहतराम के साथ बिठा करके उन्हें दोनों वक्त पेट भर के खाना खिलाते थे। इस तरह से बरसों अशरफिया, दारुल उलूम अशरफिया चलता रहा। मुबारकपुर वालों से जाकर के पूछ लो, वो कहते हैं कि सिर्फ बच्चों की खिदमत की ये बरकत है कि आज मुबारकपुर माला माल है, हर गरीब कोठियों में रहता है, एयर कंडीशन पे रहता है। और जिस आदमी को एक बच्चा नहीं मिलता था वो रोता था कि मेरी किस्मत में बच्चे को खिलाना नहीं है। कई मर्तबा जाता था हाफिज साहब, कोई नया दाखिला हुआ है तो एक बच्चा दीजिए, कैसा जज्बा था। रसोड़ा नहीं था, वो तो बाद में बहुत जमाने के बाद वहाँ रसोड़ा कायम किया गया, लेकिन आज भी जागीर का वहाँ सिस्टम है, लोग लेके जाते हैं। 3 किलोमीटर सिकटी है, सिकटी जहाँ सिर्फ किसान रहते थे, वहाँ के लोग आ करके बच्चों का नाम लिखवा करके जाते थे, और बच्चे भी इतने सलीकेमंद उस जमाने के थे, खाने के लिए दोनों टाइम हर मौसम में 3 किलोमीटर पैदल चल के जाते। आज तलवा से कहो आधे किलोमीटर पर तू रोज जाके खाना खा, मदरसा छोड़ के भाग गया। इधर का भी वही हाल है, इधर का भी वही हाल है। उस जमाने में ऐसे मशक्कत के साथ पढ़ा है, मैंने खुद पढ़ा, कहाँ पढ़ा है, ये आपका झाड़ है ना, वहां मदरसा मस्जिद में था, मस्जिद फजर के बाद बंद कर दी जाती थी, उसका सेहन बहुत बड़ा था, उसी सेहन में सारी दर्शगाहें दौरे तक की लगी। हमारे सारे बुखारी की दर्शगाह को टीन का शेड भी नहीं मिला था, एक मुलशरी का झाड़ था, उसके नीचे टेक लगाकर बैठते थे, और हम लोगों को बैठने के लिए शतरंजी दरी भी नहीं रहती थी, गर्मियों में ठंडे फर्श पर बैठते थे, और सर्दियों में ठंडे फर्श पर और गर्मियों में तपते हुए फर्श पर बैठ करके पढ़ते थे। अगर किसी ने दस्ती रुमाल निकाल करके बिछा लिया तो हमारे सारे बुखारी का टेंपर हाई हो जाता है। यहाँ नवाबजादे बन के आ खुली चटाई पर नहीं, चटाई की मुयस्सर नहीं थी, वहां हमने बैठ करके पढ़ा, और कैसा पढ़ा है वो आप लोग जानते हैं, हमारे पास पढ़ने वाले जानते हैं। खाना कहाँ था बरेली शरीफ में, जागीर भी नहीं थी, 500 बच्चे पढ़ते थे, और उस वक्त 700 मस्जिदें बरेली शरीफ में थी, हर तालिबे इल्म एक मस्जिद में इमाम होता था, 500 मस्जिदों में इमामत करते थे। तनख्वाह कितनी मिलती थी, 2.5 रुपये, 3 रुपये, मेरी सबसे बड़ी तनख्वाह थी 7 रुपये। मुलुकपुर बसरिया में इमामत करता था, 7 रुपये मेरी तनख्वाह, खाने का इंतजाम घर से लोग डब्बा लाकर इमाम साहब को खिलाते थे। इस तरह से हमने तालीम हासिल की, 7 रुपया महीना, फिर भी हमारा उसमें 3 रुपया महीना बच जाता है। 5 रुपया महीना मैं खर्च करता था नाली धोबी और जलेबी का नाश्ता, उसमें दही, ये 5 रुपये में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना गुजरता था। कितना सस्ता था, 3 रुपये फिर भी महीने का बचाता था। आप बोले क्यों बचाते थे? उससे किताबें खरीदता था। आज मेरी लाइब्रेरी माशा अल्लाह देखिए, उस जमाने की खरीदी हुई किताबें। तलबा को भी मैं नसीहत करता हूँ और आपको सबसे ज्यादा नसीहत करूंगा, अगर इन तलबा की आपने दिलदारी की तो इंशाअल्लाह कयामत में नबी आपकी गमखारी फरमाएंगे। और ऐसी आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, रब सल्लिम कहने वाले गमशुदा का साथ हो, रब्बुल आलमीन के रसूल उस वक्त गमों से लोगों को छुड़ाने वाले, हमें सिराते मुस्तकीम से बताने वाले खड़े रहेंगे। अभी मौलाना जाकिर साहब ने कहा, हुजूर का बचाना तो होगा, वहाँ बैल भी बचाएंगे। अरे बैल बन गया हो ना, बैल नहीं गधे बन जाओ। खुदा की कसम, ये तलबा जो कुछ तुम्हें कहते हैं, इनकी जबान से निकली हुई गिरी हुई बात भी बड़ी ऊंची होती है, गिरी हुई बात भी ऊंची होती है। वो गधा अगर कह दे तो परेशान मत होना, गधा बहुत ज्यादा मुतहम्मिल मिजाज होता है, गधा बड़ा साबिर होता है, गधा अपने मालिक का घर और जिस रास्ते से वो बोझ लेकर चलता है वो कभी रास्ता भूलता नहीं है। अहमदाबाद चले जाइए, एक जगह का नाम है रायखड़, असल में वो रायखड़ नहीं है, राहे खर है। बादशाह के महल में गधे मिट्टी रेत पत्थर लेकर चलते थे, तो उनकी एक राह थी, एक रास्ता था। वो नदी से बोझ लादते थे और उनका निगरा जो था वो रास्ते पर डाल देता था, सीधे बादशाह के महल में पहुंच जाया करते थे। उस रास्ते का नाम ही राहे सर पड़ गया। अब गुजरात में तो नाम बिगाड़ने का हमेशा से एक मिजाज रहा है, मोहम्मद नाम है तो मोहम्मद कहेंगे, अहमद नाम है तो अमन कहेंगे, इस्माइल नाम है तो माला कहेंगे, अजीब अजीब है। सही नाम लेते ही नहीं तो इस गधे के रास्ते का नाम क्यों सही हो? राहे घर को राय है। और एक और जगह है उसको रखियाल कहते हैं, है ना, रखियाल। ये रखियाल क्या है? खैल कहते हैं घोड़े को। ये राहे खैल था, यहां से घोड़े चलते थे तो वो राहे खैल को रखियाल कर दिया और राहे खर को राखड़ कर दिया, रायखड़ कर दिया। बहरहाल मुझे ये कहना है, बादशाहों के यहाँ ये सब भी काम करते थे, घोड़े भी काम करते थे, बैल भी काम करता था, गधा भी काम करता था, लेकिन बादशाह का गधा गधा होता था। अगर किसी ने डंडा मार दिया तो बादशाह के मुलाजमीन जबड़ा पकड़ के खींच लेते थे, ये अरे गहरे नथू खैरे का गधा नहीं है, बादशाह सलामत का है, क्यों मारा तेरे बाप का खाता? सजा दी जाती है। बड़ों का गधा, बड़ों का बैल बनकर देखो, बड़े का बैल भी अपने मालिक के खूंटी पर रहता है, उसे कोई डंडा मारेगा तो मालिक और मालिक के नौकर उसकी पूरी गणपति उतार देंगे। मेरे दोस्तों, जानवर बनना और किसी मालिक और अच्छे का जानवर बनना भी बड़े कमाल की बात है। मुस्तफा के मेहमानों ने अगर किसी को बैल कह दिया, गधा कह दिया, नाराज मत होना, सुन लिया था, बहुत बड़ी नसीहत फरमाई आप। तुम बल्कि जाजा कर कहो आ बैल मुझे मार, ले बैल मुझे मार या नहीं, आ बैल मुझे मार, सिंह पकड़ पकड़ के पेट में डालो। ये बैल जो है ये बड़े काम का है, सिराते मुस्तकीम पर राहे बैल में तुम्हें अपनी राह में तुम्हें लेकर के चलेगा। इसलिए बैल बोला, गधा बोला, तालिबे इल्म बोला, तो शुक्रिया अदा करो। ऐ तालिबे इल्म, अपना गधा ही बना करके वहां रखना, अपना बैल बना कर रखना, वही मिजाज का दरिया बन जाएगा। लेकिन मुनाफिकों का इस जबान मत इस्तेमाल करना, इन अल्लाह वालों को, इन अल्लाह वालों की अजमत और इज्जत करना, ये एक मोमिन की शान है और इज्जत करने वालों की तारीफ परवरदिगार आलम फरमाता है। अल्लाह ताला इस मदरसे को, सिद्दीक अकबर को और बड़ाइयां अता फरमाए और हाजी साहब को लंबी उम्र अता फरमाए। कितनी उम्र हो गई आपकी? बहुत हो गई, इतनी हो गई कि इनको याद ही नहीं, 90 साल के हो गए, मुझसे बहुत हो गए, 75 के होंगे, 68। लेकिन आप बोलेंगे कमजोर क्यों हो गए? अगर आप लोग विटामिन आप इनको देंगे तो ये ताकतवर बन जाएंगे, अपना विटामिन सब खर्च कर रहे हैं, इसलिए कमजोरी आ गई है। अब बाहर से फॉरेन विटामिन की जरूरत है, आप इन्हें दे ना दे, इस पीराना साली ने भी सिद्दीक अकबर के नाम पर उस्मानी खजाना लुटा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत और सलामती अता फरमाए, इनके बच्चों को भी सेहत और सलामती के साथ हासिदीन की निगाह से बचाए, मेहमानान रसूल की खिदमत की तौफीक रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब खड़े होकर सलात और सलाम करते हैं। जो लोग खुशी से मुरीद होना चाहते हैं, हमारी माँ बहनें हों या जेंट्स और मर्द हजरात हों, मुरीद होने की नीयत से अपना उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ ऊपर रख लें और दिल में मुरीद होने की नीयत कर लें। मैं जो पढ़ाता हूँ वो पढ़ते चले जाएं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में सब दाखिल हो करके इंशाअल्लाह उस सिलसिले का फैज हासिल कर सकेंगे। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिले मारा उन मुस्तकीम बहक़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, हम तौबा करते हैं अपने गुनाहों से, हमारी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा, शरीयत पर चला, अहले सुन्नत के मजहब पर कायम रहेंगे, गुमराहों से, वहाबियों से बचते रहेंगे, नमाज रोजे हर फर्ज हर वाजिब को उनके वक्तों पर अल्लाह की तौफीक से अदा करते रहेंगे, गुनाहों से बचते रहेंगे। मैंने अपना हाथ पीराने पीर पीरे दस्तगीर सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी महबूब सुबहानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में दिया, इलाही मुझे गौसे पाक के सच्चे मुरीदों में कबूल फरमा। कयामत के दिन उनके गिरोह में उठा, आमीन या रब्बल आलमीन। दुआ के लिए याद उठाओ, अल्लाहुम्मा सब्बितना व सब्बितहुम व सब्बितहुन्ना अलल इस्लाम व अलल सुन्नती वल जमाअ। اللهم نور قلوبهم وقلوبهن بنور الإيمان وبنور الإيقان وبنور العرفان يا نور النور قبل الأزمنة والدهور إله العالمين اس جلسے نور کو شرف قبول عطا فرما، جتنے تیرے بندے تیرے حبیب کے چاہنے والے مرد عورت بوڑھے جوان سب کی حاضریوں کو قبول فرما کر مولا ان کے خالی ہاتھوں کو رحمتوں کے پھول سے بھر دے، ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما، جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا، نمازیوں کے سجدوں میں خلوص پیدا فرما، الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، بالخصوص وہ بچے اور بچیاں جن کا نام ہمارے مولانا نے لیا، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں کوئی بیمار ہو اس جلسے میں آنے والے ان کے اہل خاندان بیمار ہوں ایمان والے سب کو پروردگار عالم صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرما کر انہیں اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، بالخصوص میرے چھوٹے بھائی کا بھی ایک ہفتہ پہلے انتقال ہوا ہے، مرحوم وسیع احمد، اور ہمارے رفیق بھائی پاچا والے اور دوسرے جو بھی اہل سنت دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، مولا سب کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے۔ میرے بے نیاز مولا اپنے کرم سے جناب حاجی یوسف صاحب کو پروردگار عالم صحت و سلامتی کے ساتھ تادیر ان کے بچوں پر ان کا سایہ قائم و دائم فرما، اور مدرسے کی جو انہوں نے جس لگن سے خدمت کی ہے اسے قبول فرما کر ان کو اور ان کے اہل خاندان کو دارین کی سعادتیں عطا فرما۔ جو طلبہ فارغ ہوئے ہیں مولا ان کے حفظ کو محفوظ فرما کر انہیں اچھا حافظ اور قاری بنا کر نمازوں میں امامت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو علماء مشائخ سادات اسٹیج پر ہیں سب کے علمی اور روحانی خلوص کو عام اور کام فرما دے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کل مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.